अरुणिमा देखती है तो ये भूमि की कॉल थी। वो फोन उठाकर कान पर लगाती है और कहती है, हाँ भूमि बेटा, हो गया कैंपिंग का काम खत्म? सामने से भूमि ने कहा, नमस्ते आंटी जी, जी कैंपिंग का काम खत्म हो गया है और सब कुछ सही रहा है। मैं बस रात में ही निकलने वाली हूँ, कल तक पहुँच जाऊंगी। अरुणिमा ओके करके फोन रख देती है तो जानवी पूछती है, भाभी किससे बात कर रही थी? बहुत खुश नजर आ रही थी आप उससे बातें करते वक्त। अरुणिमा मुस्कुराते हुए कहती है, खुश क्यों नहीं होगी, आखिर मेरी होने वाली बहू जो है। ये सुनते ही जानवी की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। अरुणिमा उसे सब बता देती है कि भूमि अमृता की दोस्त है और अरुणिमा ने उसे अपनी बहू के रूप में चुना है। अरुणिमा की बात सुनकर जानवी कहती है, भाभी ये आप क्या कह रही हैं, एक ऐसी लड़की जो अनाथ है उसे आप अपनी बहू बनाना चाहती हैं, आपको लगता है ये सही है? बिल्कुल जानवी, इसमें क्या गलत है, भूमि अच्छी लड़की है, अरुणिमा ने कहा। तो जानवी कहती है, नहीं भाभी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भूमि अच्छी लड़की नहीं होगी, जरूर वो बहुत अच्छी लड़की होगी, तभी तो आपने उसे अपनी बहू के रूप में चुना है, लेकिन एक ऐसी लड़की जिसका कोई नहीं है, क्या वो आपके घर को संभाल पाएगी? अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए जानवी से कहा, सिर्फ वही लड़की मेरे घर को संभाल पाएगी और उससे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि मुझे मेरे घर के लिए एक सही लड़की मिलेगी। जानवी हैरान हो जाती है तो अरुणिमा कहती है, जानवी मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि जिस तरीके से आजकल की लड़कियों का रहन सहन हो रहा है, मुझे तो कभी कभी बहुत डर लगता है कि कहीं कोई गलत लड़की मेरे घर ना आ जाए। जानवी, ये गलत लड़की आएगी और मेरा सारा घर बर्बाद करके चली जाएगी, इसीलिए मैंने भूमि को अपने घर की बहू के रूप में चुना है। भूमि एक कच्ची मिट्टी है, उसके आगे पूछे कुछ नहीं है और उसके लिए परिवार की बहुत वैल्यू है। भूमि को कुछ भी नहीं आता है, उसे जो सिखाया जाएगा वो वही सीखेगी। उसकी जिंदगी में परिवार बहुत मायने रखता है। जब उसे एक ऐसा परिवार मिलेगा जहाँ उसे प्यार, सम्मान, इज्जत सब कुछ मिलेगा, तो वो उस परिवार के लिए सारी जिंदगी ईमानदार रहेगी। जानवी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो कहती है, मान गई भाभी, आपने बहू भी पसंद की है तो वो भी बिल्कुल अपने जैसी। जानवी की बात सुनकर अरुणिमा के चेहरे पर मुस्कान तो आ जाती है, लेकिन अपने मन में अरुणिमा सोचते हुए कहती है, बस मैं यही चाहती हूँ कि भूमि की किस्मत मेरी जैसी ना हो। वहीं दूसरी तरफ आस्तिक अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रहा था। सामने वाले की बात सुनकर आस्तिक कहता है, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो फार्म हाउस नहीं गया है? सामने से कोई कहता है, जी राजा साहब, जब से आपने हमें बताया है हम तब से यही फार्म हाउस में ही बड़े कुंवर साहब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर आई नहीं है और पता करने पर हमें पता चला है कि वो तो बीच रास्ते से ही गाड़ी लेकर कहीं दूसरी जगह चले गए हैं, अब वो कहाँ गए हैं वो हमें नहीं पता है। आस्तिक ठीक है बोलकर फोन रख देता है और सोचते हुए कहता है, कहाँ गए हो तुम आकाश, अगर तुम इंडिया आ चुके हो तो तुम फार्म हाउस में क्यों नहीं हो? वो फार्म हाउस तो तुमने अपने रहने के लिए ही लिया था ना, और अगर तुम फार्म हाउस में भी नहीं हो तो तुम हो कहाँ पर? वहीं पर एक घोड़े के अस्तबल के सामने अनंत अपने हाथ बांधे हुए खड़ा था और अपनी निगाहें छोटी करते हुए वो बस आकाश को देखे जा रहा था जो एक घोड़े के पास खड़ा था। अनंत आकाश के पास आता है और कहता है, भाई आप सच में सीरियस हो? मतलब हम गाड़ी में भी तो जा सकते हैं ना, इस घोड़ा गाड़ी में जाने की क्या जरूरत है? आकाश उस घोड़े की गर्दन को सहलाते हुए कहता है, तुझे पता है ना छोटे कि मुझे घोड़े कितने पसंद है? अनंत ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई पसंद तो मुझे डॉग भी है, लेकिन डॉग पर बैठकर जाऊंगा अजीब नहीं लगूंगा? अनंत की बात सुनकर आकाश के चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान आ जाती है। उसने अनंत के बाल बिगाड़ते हुए कहा, यहाँ आना मेरी मर्जी नहीं मजबूरी थी, और अब जब यहाँ आ ही गया हूँ तो क्यों ना लोगों को ये बता दूँ कि उन्होंने अपनी जिंदगी में तूफान को बुलाया है। तो ये सब छोड़ छोटे, और ये बता तू कौन सा वाला घोड़ा लेगा? अनंत जल्दी से दो कदम पीछे हो जाता है और अपने दोनों हाथों को सामने करते हुए नामे अपने हाथ हिलाता है और कहता है, कोई सा भी नहीं, मैं जिंदगी में एक ही बार घोड़े पर बैठूंगा, वो भी तब जब सर पर सहरा होगा। इसके अलावा मुझे कोई शौक नहीं है हॉर्स राइडिंग का, आपका शौक है आप ही कीजिए, मैं तो गाड़ी से जा रहा हूँ। आकाश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी और उसने हवा में सर हिलाते हुए कहा, तू पहुँच मैं आता हूँ, वहाँ किसी को बताना मत कि मैं आ रहा हूँ। अनंत ओके बोलकर गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी ड्राइव करते हुए वो सिंगल महल की तरफ निकल जाता है, लेकिन उसके जाने के साथ ही आकाश के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो घूरती हुई बिकाहों से उस घोड़े को देखने लगता है। आकाश के चेहरे पर इस वक्त एक डेविल स्माइल थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। दूसरी तरफ महल में मनोहर की तैयारी हो रही थी, अमृता के ससुराल वाले आ चुके थे और यहाँ से अरुणिमा, जानवी, आस्तिक और पृथ्वी गार्डन में मनोहर की रस्म कर रहे थे। इस रस्म में लड़के वाले और लड़की वालों के परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें साड़ी, कपड़े और सुहाग का सामान दिया जाता है। जैसे ही रस्मों की शुरुआत होती है वैसे ही प्रमिला जी कहती हैं, माफ कीजिएगा रानी साहिबा, हमें नहीं पता था कि आप भी आने वाली हैं, वरना हम आपके लिए भी मनोहर की थाल सजा के लाते, हमें लगा कि आप शायद राजा साहब के साथ नहीं रहती हैं तो इस शादी में भी शामिल नहीं होंगी। प्रमिला जी की बात सुनकर आस्तिक और अरुणिमा हैरान हो जाते हैं, पृथ्वी और जानवी भी हैरानी से उन्हें देख रहे थे। अरुणिमा ने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं, ये तो घर की बात है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, और एक मनोहर की ही तो रस्म है, आप एक रुपए का शगुन रखकर भी कर सकते हैं।